नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। प्ले बिगर, अल रमदान, डेव पीटरसन, क्रिस्टोफर लॉकहेड और केविन मिनी की व्यवसाय और रणनीति पर केंद्रित पुस्तक है। इसका मूल तर्क यह है कि असाधारण कंपनियां मौजूदा बाजार में केवल बेहतर उत्पाद बनाकर नहीं जीतती, वे नई श्रेणियां गढ़ती हैं और फिर उन श्रेणियों की परिभाषा, मांग तथा खरीद के मानदंडों को प्रभावित करती हैं। लेखक ऐसी अग्रणी कंपनियों को कैटेगरी किंग कहते हैं। पुस्तक का उद्देश्य उद्यमियों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विपणन नेताओं को उत्पाद केंद्रित प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़ाकर कैटेगरी डिजाइन की सोच सिखाना है। इसमें सेल्सफोर्स, उबर और नेटफ्लिक्स जैसे परिचित उदाहरणों के माध्यम से दिखाया गया है कि ग्राहक अक्सर किसी नए समाधान को तभी अपनाते हैं जब वे पहले उसके पीछे मौजूद नई समस्या या नई श्रेणी को समझ लें। यह कोई पारंपरिक विपणन पुस्तक नहीं है, क्योंकि इसका ध्यान विज्ञापन, मूल्य या फीचर तुलना से अधिक बाजार की नई भाषा और संदर्भ बनाने पर है। इसकी शैली ऊर्जावान और कभी कभी अतिशयोक्तिपूर्ण लग सकती है, फिर भी इसका केंद्रीय ढांचा आधुनिक नवाचार रणनीति में प्रभावशाली रहा है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, कैटेगरी डिजाइन का लक्ष्य बेहतर उत्पाद नहीं, नई खरीद समस्या बनाना है। पुस्तक का सबसे विशिष्ट विचार कैटेगरी डिजाइन है। इसके अनुसार कंपनी को अपने उत्पाद को किसी पहले से मौजूद खांचे में सबसे अच्छा विकल्प बताने के बजाय ग्राहक के सामने एक ऐसी समस्या रखनी चाहिए जिसे पुराना बाजार ठीक से नहीं समझता या हल नहीं करता। फिर कंपनी उस समस्या के समाधान के लिए एक नई श्रेणी का नाम, अर्थ और खरीद मानदंड स्थापित करती है। लेखक इसे बेहतर होने के बजाय अलग होने की रणनीति मानते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी खुद को केवल अधिक सुविधाओं वाला सॉफ्टवेयर कहती है, तो ग्राहक उसकी तुलना स्थापित विक्रेताओं से कीमत, फीचर और जोखिम के आधार पर करेगा। लेकिन यदि वह काम करने के पुराने तरीके की सीमा स्पष्ट कर दे और एक नई श्रेणी का उपयोगी ढांचा दे, तो तुलना के नियम बदल सकते हैं। यह अंतर महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्राहक उत्पाद नहीं, अपनी समझी हुई समस्या का समाधान खरीदते हैं। इसलिए कैटेगरी डिजाइन में उत्पाद विकास, कंपनी की रणनीति और बाजार संचार को अलग गतिविधियां नहीं माना जाता, वे एक ही प्रयास के हिस्से हैं। पुस्तक यह भी संकेत देती है कि नई श्रेणी गणना केवल नया नाम दे देना नहीं है, उसके लिए वास्तविक ग्राहक पीड़ा, विश्वसनीय समाधान और लगातार बाजार शिक्षा आवश्यक है। अन्यथा श्रेणी का दावा केवल विपणन का शोर बनकर रह जाता है। दूसरा, कैटेगरी किंग सबसे अधिक मूल्य इसलिए पाते हैं क्योंकि वे बाजार के नियम तय करते हैं। प्ले बिगर का दावा है कि किसी नई श्रेणी में विजेता को सामान्य बाजार अग्रणी से अलग समझना चाहिए। कैटेगरी किंग वह कंपनी है जो लोगों के मन में श्रेणी का प्रमुख संदर्भ बन जाती है। उसका लाभ केवल अधिक बिक्री नहीं, बल्कि यह क्षमता है कि ग्राहक समस्या को उसी की भाषा और मानकों से देखने लगे। जब ऐसा होता है, प्रतिस्पर्धियों को प्रायः किंग द्वारा स्थापित मानदंडों के भीतर अपना स्थान बनाना पड़ता है। लेखक सेल्सफोर्स को क्लाउड ग्राहक संबंध प्रबंधन के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जहां श्रेणी की धारणा ने उत्पाद के मूल्यांकन का संदर्भ बदला। इस तर्क का आर्थिक पक्ष भी है। एक परिचित श्रेणी में कई कंपनियां समान मांग के लिए लड़ती हैं, जिससे कीमत और फीचर की प्रतिस्पर्धा तेज होती है। नई श्रेणी का स्पष्ट नेता होने पर कंपनी को पहचान, भरोसा, साझेदारियां और प्रतिभा आकर्षित करने में लाभ मिल सकता है। हालांकि पुस्तक का संदेश यह नहीं कि हर कंपनी को विशाल एकाधिकार बनना चाहिए। अधिक व्यावहारिक बात यह है कि संगठन को यह तय करना चाहिए कि वह किस विशिष्ट समस्या के लिए स्वाभाविक पहला विकल्प बनना चाहता है। कैटेगरी किंग बनने का विचार तभी सार्थक है जब श्रेणी पर्याप्त बड़ी संभावित मांग रखती हो और कंपनी उसे लगातार निभाने की क्षमता भी रखती हो। तीसरा, पॉइंट ऑफ व्यू बाजार को नई समस्या समझाने वाला रणनीतिक दस्तावेज है। लेखक कैटेगरी निर्माण की शुरुआत एक मजबूत पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। यह केवल ब्रांड का नारा या उत्पाद का विवरण नहीं है, इसका काम यह समझाना है कि दुनिया या ग्राहक का काम करने का तरीका क्यों बदल रहा है, पुराने विकल्प क्यों अपर्याप्त हो गए हैं और नई श्रेणी किस समस्या को हल करती है। एक प्रभावी पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी के अस्तित्व का कारण, ग्राहक की पीड़ा और भविष्य की दिशा को जोड़ता है। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि अपरिचित समाधान को बेचने से पहले अपरिचित समस्या की प्रासंगिकता स्थापित करनी होती है। ग्राहक यदि यह न माने कि वर्तमान स्थिति में कोई गंभीर कमी है, तो वह नए उत्पाद की विशेषताओं पर ध्यान ही नहीं देगा। पुस्तक के अनुसार नेतृत्व टीम को इस दृष्टिकोण में गहराई से शामिल होना चाहिए, क्योंकि श्रेणी का दावा कंपनी की दीर्घकालिक प्राथमिकताओं को प्रभावित करता है। उत्पाद रोडमैप, बिक्री वार्तालाप, निवेश, भर्ती और संदेश सभी को एक ही समस्या परिभाषा के आसपास संगत होना चाहिए। इसका व्यावहारिक जोखिम भी है। बहुत व्यापक पॉइंट ऑफ व्यू अस्पष्ट बन जाता है, जबकि बहुत संकीर्ण दृष्टि बड़े बाजार का आधार नहीं बनती। इसलिए इसे ग्राहक प्रमाण, वास्तविक तकनीकी या व्यावसायिक बदलाव और स्पष्ट लाभ पर टिकना चाहिए। पुस्तक की उपयोगी चेतावनी यही है कि फीचर सूची से बाजार नहीं बनता, बाजार उस व्याख्या से बनता है जिसमें ग्राहक अपनी समस्या को नया अर्थ देता है। चौथा, मार्केट कंडीशनिंग और इकोसिस्टम नई श्रेणी को व्यक्तिगत दावे से सामूहिक विश्वास में बदलते हैं। नई श्रेणी का निर्माण किसी एक प्रचार अभियान से पूरा नहीं होता। प्लेबिगर इसे मार्केट कंडीशनिंग की प्रक्रिया कहती, जिसमें कंपनी लगातार बाजार को समझाती है कि समस्या क्या है, वह अभी क्यों महत्वपूर्ण है और नई श्रेणी को कैसे पहचाना जाए। यह शिक्षा सामग्री, बिक्री संवाद, ग्राहक अनुभव, विश्लेषक संबंध, साझेदारी और सार्वजनिक चर्चा जैसे कई माध्यमों में दिखाई दे सकती है। इसका उद्देश्य तत्काल उत्पाद खरीद कराना भर नहीं, बल्कि लोगों की निर्णय भाषा बदलना है। लेखक इकोसिस्टम डिजाइन पर भी जोर देते हैं। इकोसिस्टम में ग्राहक, साझेदार, विशेषज्ञ, समर्थक और अन्य ऐसे लोग आते हैं जो श्रेणी की विश्वसनीयता तथा उपयोगिता बढ़ाते हैं। यह पहलू महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्राहक किसी अनजान श्रेणी को एक अकेली कंपनी के स्वार्थपूर्ण दावे के रूप में देख सकते हैं। जब उसके चारों ओर ज्ञान, सेवाएं, साझेदार और अपनाने वालों का नेटवर्क बनता है, तो श्रेणी अधिक वास्तविक और कम जोखिमपूर्ण लगती है। फिर भी इकोसिस्टम को केवल समर्थन जुटाने की कवायद समझना गलत होगा। उसे ग्राहक के सफल उपयोग में योगदान देना चाहिए। खराब उत्पाद अनुभव या कमजोर वितरण को समुदाय और प्रचार से नहीं छिपाया जा सकता। पुस्तक का व्यावहारिक निष्कर्ष है कि बाजार शिक्षा को उत्पाद की गुणवत्ता, ग्राहक परिणाम और संगठन की विश्वसनीयता के साथ जोड़ना होगा, तभी नई शब्दावली स्थायी खरीद व्यवहार में बदल सकती है। अंत में लाइटनिंग स्ट्राइक और कैटेगरी लाइफ साइकिल समय ध्यान और दीर्घकालिक नेतृत्व की चुनौती दिखाते हैं। पुस्तक में लाइटनिंग स्ट्राइक उस निर्णायक ध्यान आकर्षित करने वाले प्रयास के लिए प्रयुक्त होता है जो नई श्रेणी को बाजार की नजर में स्पष्ट और तात्कालिक बनाता है। इसका अर्थ केवल महंगा प्रचार नहीं है, यह ऐसा समन्वित क्षण हो सकता है जिसमें उत्पाद, दृष्टिकोण, ग्राहक प्रमाण, नेतृत्व संदेश और वितरण एक साथ सामने आए। लेखक के अनुसार इसका उद्देश्य बाजार को झटका देकर नई समस्या और नई श्रेणी पर चर्चा शुरू कराना है, लेकिन यह एक बार की घटना नहीं, दीर्घकालिक अनुशासन का हिस्सा है। पुस्तक कैटेगरी लाइफ साइकिल का भी वर्णन करती है। आरंभिक चरण में अनेक कंपनियां नए अवसर में प्रवेश करती हैं। समय के साथ बाजार स्पष्ट होता है, कुछ कंपनियां बाहर होती हैं और एक प्रमुख नेता उभर सकता है। इस मॉडल से लेखक समझाते हैं कि शुरुआती ध्यान पाने के बाद भी कंपनी को श्रेणी का विस्तार, ग्राहक सफलता और निरंतर नवाचार करना पड़ता है। यह विचार संस्थापकों के लिए उपयोगी है, क्योंकि वे अक्सर लॉन्च को उपलब्धि मान लेते हैं। पुस्तक के अनुसार लॉन्च के बाद असली चुनौती श्रेणी को टिकाऊ बनाना है। साथ ही यह मॉडल कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं है। हर नया क्षेत्र एक ही गति से विकसित नहीं होता और नियमन, तकनीक, पूंजी तथा ग्राहक आदतें परिणाम बदल सकती हैं। इसलिए लाइटनिंग स्ट्राइक को साहसिक कदम के साथ साथ तैयारी, प्रमाण और निरंतर निष्पादन की मांग करने वाली रणनीति के रूप में पढ़ना चाहिए। निष्कर्ष में प्ले बिगर उन संस्थापकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, उत्पाद नेताओं और विपणन रणनीतिकारों के लिए सबसे उपयोगी है, जो केवल प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलने की योजना नहीं, बल्कि बाजार में अपनी कंपनी की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित करना चाहते हैं। यह विशेष रूप से उन टीमों को उपयोगी ढांचा देता है जिनके पास कोई ऐसा समाधान है जिसे ग्राहक मौजूदा श्रेणी की भाषा में ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। पाठक इससे समस्या परिभाषा, बाजार शिक्षा, नेतृत्व संदेश और साझेदार इकोसिस्टम को एक ही रणनीति में जोड़ने का दृष्टिकोण पा सकते हैं। व्यक्तिगत पेशेवर भी इसके सिद्धांतों से अपनी विशिष्ट विशेषज्ञता और अलग कार्य क्षेत्र को स्पष्ट करने की प्रेरणा ले सकते हैं। हालांकि व्यक्तिगत ब्रांड को कंपनी जैसी बाजार श्रेणी मान लेने से बचना चाहिए। समान व्यवसाय पुस्तकों की तुलना में इसकी अलग पहचान यह है कि यह प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति निर्धारण या केवल नवाचार की चर्चा तक सीमित नहीं रहती। यह बताती है कि ग्राहकों के निर्णय से पहले उनके सोचने का संदर्भ कैसे बदला जा सकता है। इसकी भाषा कभी कभी अत्यधिक आत्मविश्वासी और प्रचारात्मक महसूस हो सकती है। इसलिए इसके दावों को हर उद्योग पर लागू होने वाला नियम नहीं मानना चाहिए। हर व्यवसाय को नई श्रेणी बनाने की आवश्यकता या क्षमता नहीं होती, फिर भी पुस्तक एक उपयोगी चुनौती देती है। क्या संगठन सचमुच ग्राहक की महत्वपूर्ण समस्या को नए तरीके से हल कर रहा है, या वह केवल भीड़ भरे बाजार में बेहतर कहलाने की कोशिश कर रहा है? इसी प्रश्न और इसे क्रियान्वित करने के ढांचे के कारण प्ले बिगर रणनीति तथा विपणन साहित्य में अलग स्थान रखती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं आल रमादान, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।